मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 7 जुलाई 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल रोजाना की तरह आज भी आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने उस एक नौजवान साथी का भी जिसने एकेडमी की जो 28 फरवरी 2016 से 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उनका नाम है भुवनेश कुमार, जो मथुरा से हैं। तो भुवनेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपने उन सभी साथियों से जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और चाहे वे अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं या फरवरी की क्लास में आने वाले हैं, उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप अब कम से कम, जबकि आपने एकेडमी के साथ एक कमिटमेंट किया है, आपको डेली ऑडियो गाइडेंस कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये बात मैं खासकर इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे जो ऑडियो गाइडेंस की प्लानिंग होती है वो एक सिलसिलेवार चलती रहती है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती हैं लेकिन जिनके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका होता हूं, इसीलिए चाहते हुए भी मैं उन्हें दोहराना पसंद नहीं करता ताकि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके साथ कम से कम उतना अन्याय ना हो। फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें जो लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती हैं, जो न केवल दोहराई ही जानी चाहिए बल्कि दोहराने के माध्यम से बार बार स्मरण भी दिलाई जानी चाहिए ताकि उसका महत्व स्थापित हो सके। तो ऐसी बातों को मैं रिपीट भी करता हूं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और मित्रों, इसी के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी खबर ये है कि सेकेंड बैच के जो यहाँ के स्टूडेंट हैं राहुल रॉय, जिनके बारे में आपको मालूम है कि जिनका MIT बॉस्टन में एडमिशन हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें कैनेडा शिफ्ट करना पड़ा था। और उन सब के लिए, उनके लिए हम सब ने मिलकर ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, हमारे मित्र राहुल राय को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें। ईश्वर ने आप सब की प्रार्थना सुनी और इसके पहले मैंने सूचना दी थी कि अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे पास इसकी खबर आई थी। और अब जो उन्हीं के बैच के उनके साथी थे मनोहर दत्त मिश्र, जो पटना से हैं, उनका मुझे मेल मिला है कि राहुल राय पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, बहुत तेजी के साथ वो रिकवर कर रहे हैं और यहां तक कि वो अमेरिका बॉस्टन लौट चुके हैं। अब जैसे ही उनको अलाउ किया जाएगा कि वो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल हैंडल कर सकें, वैसे ही वे अपने मित्रों से बात करेंगे। तो मित्रों, ये बेहद खुश करने वाली खबर है, इसके लिए मैं सच में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं क्योंकि प्रार्थना आपने भी की थी। और खासकर उनके बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में मैं समझता हूं कि राहुल राय की तस्वीर डेफिनेटली होगी क्योंकि राहुल राय को उन्होंने मंच से सुना था। मित्रों, इसी के साथ ही मैं ये तो दावा नहीं करता कि सारा कमाल हम लोगों की प्रार्थनाओं का ही है, हम लोगों की दुआओं का ही है, लेकिन मैं इस बात पर यकीन जरूर करता हूं कि कुछ न कुछ इसका भी असर होता है। और सच पूछिए फ्रेंड्स, आपको भी मुझे लगता है कि इस विश्वास को अपने साथ लेकर जीवन की यात्रा करनी चाहिए। झूठा ही सही लेकिन ये ताकत देने वाला विश्वास है, वो ये कि जब भी हम कोई बड़ा काम हाथ में लेते हैं या जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं तो डेफिनेटली करते तो हम हैं लेकिन उसमें योगदान पता नहीं कितने लोगों का होता है। कुछ की दुआएं होती हैं, कुछ की कह लीजिए कि दवाएं होती हैं, कुछ के आशीर्वाद होते हैं, कुछ के पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और यहां तक कि कुछ के निगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव तरीके से ले लेते हैं तो वो निगेटिव कमेंट्स भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनते हैं। हर व्यक्ति का योगदान होता है जो हमारे संपर्क में आता है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि इतने बड़े ग्रुप ने जब राहुल राय के स्वास्थ्य के बारे में ईश्वर से प्रार्थना की थी तो ईश्वर उसे कैसे अस्वीकार कर सकता है, उसकी कैसे अनदेखी कर सकता है। तो राहुल राय, एक बार फिर से मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की ओर से और अपनी तरफ से भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो और हम लोगों के बीच में उसी तरह से इंटरेक्शन करो जैसे कि तुम पहले कर रहे थे। मुझे तुम्हारे उस मेल की बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा है जब तुम अपने हाथ से मेल लिखोगे एकेडमी को और मैं वह मेल अपने सभी प्रिय श्रोताओं को सुनाऊंगा। मित्रों, राहुल राय की यह खबर उस बीच आई है जब हम देख रहे हैं कि सिविल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है और सिविल सर्विस का रिजल्ट ने इस बार हमको सोचने के लिए अनेक तरह के कोण दिए हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एंगल प्रोवाइड किए हैं और हम उन एंगल्स को लेकर के अभी डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी कुछ समय तक करते रहेंगे। ये बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर के बहुत से मिथ हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, या तो हमने बैठा लिए हैं या जिनको नहीं मालूम है वो बता देते हैं, उसकी वजह से बैठ जाते हैं। सही गलत जो कुछ भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दोज मिथ्स। हमारे दिमाग में जो भी इस तरह के विचार बने हुए हैं, आइए हम सब उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी जांच परख करते हैं कि वो कितने सही हैं, वो कितने गलत हैं, ताकि यात्रा की शुरुआत करने से पहले हम उस सारा साजो सामान अपने पास इकट्ठा कर सकें जिसकी जरूरत हमें इस यात्रा में पड़ेगी। और फ्रेंड्स, नो डाउट इसमें जो दिमागी ताकत है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, न केवल मैं इस यात्रा का राहगीर ही रहा हूं बल्कि पिछले लगभग 32 साल से मैं उन राहगीरों को भी देख रहा हूं जो लगातार उस समय से लेकर अब तक इस यात्रा में लगे हुए हैं। आप किसी से भी व्यक्तिगत रूप से पूछिए तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, जबकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए तो हम सब उसे एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। और सच पूछिए तो ऐसे सोचने वालों में मैं खुद भी था। ऐसा नहीं कि केवल आप ही हैं या आप लोगों को मैं कोई ब्लेम कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। ये तो एक मेच्योरिटी का लेवल होता है, एक एक्सपोजर होता है, जब आप सच में चीजों को अंदर से देखते हैं, उनको देखने के बाद सच्चाइयों को केवल सतही तौर पर नहीं मानते बल्कि उनके जब अंदर घुसकर देखते हैं तो आपको एक अलग तरीके की सच्चाई दिखाई देती है, तब फिर आप उसे दूसरों के सामने रखते हैं। और सच पूछे तो उसी तरह की कोशिश मैं ये ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से अभी आप लोगों के सामने कर रहा हूं। मित्रों, कल मैंने ईरा सिंघल की बात की थी और सच पूछिए तो मैंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि आप समझ सकें कि सही मायने में हमारे जीवन में और खासकर बड़े काम करने के लिहाज से हमारी जो मेंटल एबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, उसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है। और आप ये भी देखें मित्रों कि उस भूमिका की जरूरत केवल इसलिए, उस मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत या इस स्ट्रेंथ की भूमिका जिस पर आप पूरा का पूरा सिविल सर्विस का सिस्टम लिखेंगे, सिविल सर्विस में सफलता की कहानी लिखेंगे, वो जो मेंटल स्ट्रेंथ की भूमिका है उसकी जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। देखिए, मैं ये बात नहीं कहता कि ये यात्रा लंबी ही है, छोटी यात्रा की गुंजाइश नहीं है, यह मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। और रिजल्ट इस बात को प्रूफ भी करते हैं और लगभग हर साल के रिजल्ट्स इस बात को प्रूफ करते हैं। अगर हम ईरा सिंघल की बात को लें तो आप देखते हैं कि उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई, मतलब सिविल सर्विस का आईएएस उनको मिला। इससे पहले भी वो क्वालिफाई कर चुकी थी लेकिन जो प्रॉपर आईएएस में आई वो फोर्थ अटेम्प्ट में आई और वो भी टॉप करके आई, राइट। इसके बाद हम थर्ड फोर्थ पोजीशन पर आप चले जाइए तो वहां भी जब आप देखते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे चले जाइए तो वहां भी जो अभी हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है वो यही है कि किसी ने थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, किसी ने फोर्थ अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। मित्रों, तो क्या इसके आधार पर हम ये धारणा बना लें कि इसके लिए कम से कम 3 साल 3 अटेम्प्ट देना बहुत जरूरी है? क्या हम ये धारणा बना लें? वैसे भी आप ज्यादातर जब सुनेंगे तो यही आपको लगेगा कि उसको उसका थर्ड अटेम्प्ट था, उसका फोर्थ अटेम्प्ट था, वो पहले से सर्विस ऑलरेडी कोई इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, कोई पता लगा कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में था, तो कोई इंडियन अकाउंट सर्विस में था, कोई रेलवे सर्विस में था, इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। और अब वो प्रॉपर में आ गया है, आईएएस में आ गया, आईपीएस में आ गया या आईएफएस में आ गया है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो क्या सच में यह कहानी इतनी लंबी है, इतने लंबे समय की जरूरत है? मित्रों, बना बनाया कोई फार्मूला नहीं है। मैं केवल अपने इस शुरुआत से आपको यही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, बना बनाया कोई फार्मूला नहीं है। जो सिविल सर्विस का सत्य है, नो डाउट एक इसका सत्य है जो हम धीरे धीरे हासिल करेंगे, जानेंगे कि इसका सत्य क्या है। लेकिन आप इस सत्य को भी जानिए कि इसके साथ ही साथ आप सबका अपना सत्य भी है। आप अपने सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते और करना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इन सारे सत्य के बीच में, यानी कि जो सिविल सर्विस परीक्षा का जो सच है मित्रों, उन्हीं के सच के बीच में आपको अपने सच की खोज करनी पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि दूसरे का जो सच है वही आपका सच नहीं बन सकता। तब जाकर के सही मायने में मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में एक प्लान होना चाहिए, आप वो प्लान बना सकेंगे। अदरवाइज मित्रों, एक सच ये भी है कि जो इस बार के सिविल सर्विस परीक्षा में जिन्होंने सेकेंड पोजीशन हासिल की है, आपको मालूम है कि वो डॉक्टर रही हैं और केरल की रहने वाली हैं। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रॉपर आईएएस हासिल किया है और एक साल की तैयारी में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने एक साल तैयारी की केवल। और मजेदार बात यह है कि जो बैकग्राउंड है वो एमबीबीएस की है, उनके हस्बैंड भी एमबीबीएस में है। अब एमबीबीएस की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जनरल स्टडीज के पेपर को उठा करके देखें तो आप सोच करके देखिए कि एक एमबीबीएस के स्टूडेंट को जनरल स्टडीज के पेपर में कितनी मदद मिलेगी, यानी कि उसको सब कुछ पढ़ना है। अब हम ये नहीं जानते कि उन्होंने कब से अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी तैयारी पहले से ही कर रही हूं, या ये उनकी हैबिट हो कि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ रही हूं, रोज न्यूज सुन रही हूं और ये सब कुछ वो बड़े ध्यान से कर रही हूं, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम अभी पूरी तरह से यह भी कहने की स्थिति में नहीं है कि एक साल की तैयारी ही उन्होंने इनफैक्ट की है, लेकिन यह जरूर है कि एक जो सिस्टमेटिक तैयारी होती है, जो लगकर तैयारी करने की बात होती है, वो उन्होंने एक साल से की होगी, ये हम मान लेते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सेकेंड पोजिशन में आ गई। तो क्या एक साल की तैयारी ही पर्याप्त है? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस को क्वालिफाई कर लिया जाना चाहिए, या किया जा सकता है, या क्या इसी तरह की कोशिश होनी चाहिए? इसका मतलब है कि जो सेकेंड पोजिशन में आई हैं, क्या जो रेणुराज हैं, क्या उन्हीं को हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का सत्य मान लें? मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन यही सिविल सर्विस का सच नहीं है। तो मित्रों, जो आपको अपने दिमाग में जो बात बैठानी है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में और इसके डिफरेंट डिफरेंट डाइमेंशंस के बारे में, मैं जो भी स्टूडेंट्स के दिमाग में इन सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर के जो मिथ है, मैं बहुत से उन मिथ को इसलिए भी जानता हूं क्योंकि अभी तो लगभग डेढ़ साल से तो मैं डेली आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, जब से ऑडियो गाइडेंस शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी मैं लगातार स्टूडेंट्स से जुड़ा रहा हूं। वो किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जैसे शुरू के जो पांच मेरिट लिस्ट के जिनके अभी स्टूडेंट्स के हमें नाम मालूम है, उसमें से तीन दिल्ली की रहने वाली है। तो क्या अब हम यह धारणा बना लें कि नहीं, आईएएस की तैयारी दिल्ली में ही होती है, या दिल्ली वालों को ज्यादा माइलेज मिल जाता है? क्या धारणा बनाएं? या इस बार अगर शुरू के पांच में से चार स्थान लड़कियों ने हासिल किए हैं और वो भी कंटिन्यूअस, तो क्या हम ये मान करके चले कि लड़कियां ज्यादा सिंसियर होती हैं, या सिविल सर्विस उन्हीं के लायक है, या वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? या लड़कियां ये मान लें कि नहीं, हमारी ज्यादा सफल होने की संभावना है? नॉट एट ऑल फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें से अपने लिए सच की तलाश करनी होगी, और मैं उसी सच की तलाश में अभी कुछ दिनों तक आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि ये सारे मिथ जो कुहासे की तरह आप लोगों के दिमाग में फैले हुए हैं, ये कुहासा छट जाए और आप अपने लिए एक ठोस प्लान बनाकर चल सकें। और उसके लिए निश्चित रूप से मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो होती है दिमागी ताकत की। फ्रेंड्स, अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके देखा हो, टाइम्स ऑफ इंडिया जो संडे का आया था, उसमें एक और भी एक नौजवान की एक बड़ी प्रेरक कहानी दी हुई है जिसने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया है, और वो नौजवान है डॉक्टर साहिल कुमार लुधियाना से। वो डॉक्टर है, और डॉक्टर भी कहां है, लुधियाना के छोटे से क्लिनिक में नहीं, वो डॉक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कंट्री का एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, और वहां डॉक्टर होना एक वास्तव में बहुत सम्मान की बात है। उस सम्मानजनक स्थान में डॉक्टर साहिल डॉक्टर थे, लेकिन ये जो कहानी है ये किसी डॉक्टर के सिविल सर्वेंट बन जाने की कहानी नहीं है, बल्कि जो सबसे जो दर्दनाक और दुखद बात है फ्रेंड्स, वो ये कि ये जो डॉक्टर साहिल हैं, 3 साल पहले इनका जो राइट हैंड था वो एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से कुचला गया था, एक खिड़की से बुरी तरह से कुचल गया, इतनी बुरी तरह से कुचल गया कि सेंसेशन खत्म हो गया और यहां तक कि सर्जरी करनी मुश्किल हुई। मान करके चलिए कि राइट हैंड इज गॉन, अब क्या किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने लेफ्ट हैंड को तैयार करूंगा, और उन्होंने 3 साल पहले लेफ्ट हैंड से शुरुआत की अपनी जिंदगी को फिर से एक नया शेप देने की। हालत यह हो जाती थी कि उसमें किसी चीज को पकड़ना मुश्किल होता था, पानी के ग्लास तक को थामना लेफ्ट हैंड से मुश्किल था उनके लिए, राइट हैंड से तो संभव ही नहीं था। वहां से उन्होंने शुरुआत की, और फ्रेंड्स इस सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में आपको मालूम है कि जब आप जनरल स्टडीज का पेपर देते हैं, जब आप ऑप्शनल का पेपर देते हैं, और यहां तक कि जब आप कंपलसरी भी पेपर देते हैं, तो आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं, यानी कि 6 आवर्स कंटिन्यू लिखना होता है, 3 आवर्स तो कंटिन्यू लिखना ही होता है, फिर लंच ब्रेक होता है, और इसके तुरंत बाद फिर से आपको 3 आवर्स लिखना होता है, और केवल लिखना ही नहीं होता, इन बिटवीन 4,000 to 5,000 words, इतना लिखे बिना बात नहीं बनती है। तो मित्रों, जिसने 3 साल पहले लेफ्ट हैंड से लिखने की शुरुआत की हो, उसके लिखने की गति कितनी होगी, कैसी होगी। उन्होंने कहा है कि हालांकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी हो कि लोगों के समझ में आ जाए, दैट्स ऑल। और मित्रों, 3 साल पहले से अपने लेफ्ट हैंड को तैयार करके उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। और मित्रों, फिर से मैं एम्स को की बात जोड़ूंगा कि क्या जरूरत थी उनको सिविल सर्विस में जाने की, कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो अपने आप में इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में और इतना बड़ा और इतना अच्छा महान और उदार काम कर रहे थे, डॉक्टर का काम कर रहे थे। लेकिन चलिए, उनको लगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए, उन्होंने फैसला किया, वो सिविल सर्विस में आ गए। बात उसकी नहीं है मित्रों, उन्होंने क्यों फैसला किया, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सवाल यह है कि इतनी शारीरिक अक्षमता के बाद उन्होंने ये फैसला किया ही क्यों, तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकते थे, इत्मीनान की जिंदगी जी सकते थे। तो दोस्तों, किस चीज ने उन्हें सिविल सर्विस बनाया, क्योंकि हमारा कंसर्न इसी बात से है, और फिर से आप उसी बात पर आएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ, दिमाग की ताकत। फ्रेंड्स, फिर से मैं शुरू की बात पर आऊंगा, यात्रा लंबी है। सेकेंड पोजिशन में जो अभी आई है रेणु राज, आप मत मान करके चलिए कि आपके लिए भी एक ही साल पर्याप्त होगा, आप आ सकते हैं, लेकिन प्लान लंबा होना चाहिए, और अगर प्लान लंबा हो तो दिमाग की ताकत भी आपकी ज्यादा गहरी होनी चाहिए, अदरवाइज फ्रेंड्स बात बनती नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वालों की जो आपको भीड़ दिखाई देती है, अभी भी आंकड़े हैं कि 4.5 लाख लड़के बैठे, सिलेक्शन फाइनली 1200 का हुआ, और फॉर्म भरने वाले पता लगा कि 7-8 लाख लड़के हैं, तो 7-8 लाख के 4.5 लाख तो वहीं छट गए, ये बाकी बीच के कहां चले गए 3-4 लाख, और फिर यहां बीच के कहां चले गए। मित्रों इसमें बहुत बड़ा रोल, मैं नो डाउट कि नॉलेज का रोल है, एनालिटिकल पावर का रोल है, ये सारी चीज सबका रोल है, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है वो दिमागी ताकत का रोल होता है। मेरे पास जिस तरह से लोग प्रश्न पूछते हैं, आते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते भी हैं, अपनी समस्या में डिस्कस करते हैं, उन सबको देखते समझते हुए मुझे ये महसूस हुआ है और बहुत गंभीरता से और बड़ी ईमानदारी के साथ महसूस हुआ है कि स्टूडेंट शुरू में तो बहुत जोश में आ जाता है, एकदम जोश में। अभी जैसे रिजल्ट आए हैं तो लोग एकदम जोश में भरे होंगे, नहीं मुझे भी बनना है, मैं भी बन सकता हूं, ये है वो है। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, बनना है बहुत अच्छी बात है, बन भी सकते हैं, लेकिन कब, जबकि आप अपने इस जोश को थोड़े से लंबे समय तक बनाए रख सके। लोग इस जोश को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते, कुछ दिनों के बाद ढीले पड़ने लगते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं और फिर आराम से उस बहाने का तकिया बना करके आराम से चैन की नींद सो जाते हैं और कह ले फिर सोच लेते हैं कि हम तो बन जाते लेकिन ये इसके कारण हम नहीं बन पाए। दोस्तों, जो मैं डॉक्टर साहिल कुमार की जो मैंने बात की और जो ईरा सिंघल की, जाको आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं या पूरा देश जानता है, आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी सफलता के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहाने नहीं बनाए, दैट्स ऑल। तो फ्रेंड्स प्लीज, अगर आप सिविल सर्विस में आने का फैसला आपने कर लिया है तो बहानों को इजाजत मत दीजिए, बहानों को पैदा होने की इजाजत मत दीजिए, पूरी ताकत के साथ आप लग जाइए, पूरी कोशिश कीजिए। होना या ना होना वो बात की बात है, क्योंकि होगा तो तभी जब आप इन बहानों को जीत लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस पोर्शन के बाद, मोटिवेशन के पार्ट के बाद, अब मैं आता हूं एआईआर न्यूज पर। कल की एआईआर न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। उसमें एक खबर जो है जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी बात की थी, आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर जा चुके हैं, कल उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। उसमें एक शब्द आया था मित्रों, ताशकंद। ये जो ताशकंद है ये बहुत बहुत ही प्यारा नाम है, और खासकर जब रूस, मैंने आपको बताया था कि 1991 से पहले, 1991 में जब रूस कई देशों में विभाजित हो गया, 15-16 देशों में विखंडित हो गया, उससे पहले ताशकंद बट नेचुरली कि उज्बेकिस्तान रूस का ही हिस्सा था, तो ताशकंद भी रूस का हिस्सा था। और ताशकंद का नाम इसलिए बहुत उस समय हम लोगों के दिमाग में रहता था क्योंकि जो ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में रूस ने मध्यस्थता करके जो समझौता कराया था उसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि उस समझौते के बाद ही जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री वहां थे तो वहीं उनका निधन हुआ था, ताशकंद। तो ये नाम आपके ध्यान में होना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस में होता यह है कि चाहे वो प्री में क्वेश्चन पूछें, यहां तक कि मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उनका कोई ना कोई आधार होता है। तो मुझे लगता है कि ताशकंद समझौते के बारे में आपको थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। मित्रों, जो हमारे प्रधानमंत्री की ये जो मध्य एशियाई देशों की यात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। इस इंपॉर्टेंट यात्रा को आपको दो एंगल से देखना है, मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप नक्शे में इनको देखें। ये मध्य एशियाई देश बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए मायने रखते हैं। नंबर एक, इसमें से कुछ देशों के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा है, जिसमें हाइड्रोकार्बन को ले लीजिए, जिसमें उज्बेकिस्तान वर्ल्ड का शायद सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर उसके पास है, हमको इनकी जरूरत है। दूसरा, आप देखेंगे कि वहां से एक पाइपलाइन उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए एक बिछाए जाने की बात चल रही है, उसमें भी उज्बेकिस्तान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और मध्य एशियाई देशों का तो है ही। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखिए सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उत्तर सिर्फ 200 शब्दों में लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है केवल वही बातें लिखनी है, सतही बातें नहीं लिखनी है। तो आपको केवल बहुत इंपॉर्टेंट बातों को पकड़ करके चलना है। जैसे अभी जिन देशों में भी प्रधानमंत्री गए, देखेंगे आप सांस्कृतिक समझौते भी होंगे और दूसरे छोटे छोटे समझौते होंगे, लेकिन हमको पकड़कर उन बातों को चलना है जो अभी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारे लिए दो चीजें अभी सबसे ज्यादा मायने रखती है। नंबर एक, कि किस तरीके से विश्व आतंकवाद, और खासकर जो भारत में जो आंतरिक आप देख रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या अब आपके अफगानिस्तान में और इधर जो तालिबान का फैलाव हो रहा है, जो सो कॉल्ड हम कहते हैं कि इस्लामिक जो आतंकवाद चल रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए? और इसका ये जो कंसर्न है ये केवल भारत का ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है, तो मध्य एशियाई देश उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा ये हो रहा है दोस्तों कि इस मध्य एशियाई देशों में अब चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, यहां तक कि चीन के जो राष्ट्रपति थे वो पिछले साल 2013 में वहां होकर के भी आए हैं। पूरी की पूरी दुनिया की तस्वीर बदल गई है। अब आप देखिए कि 1991 के बाद रूस तो कमजोर हो ही गया, लेकिन अमेरिका भी अब धीरे धीरे उसने अब अपने को अफगानिस्तान से अपनी सेना विड्रॉ कर ली है। इसका मतलब है कि अमेरिका का अब इधर ज्यादा इंटरेस्ट उस मायने में नहीं है, वो अपनी पकड़ नहीं रखना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो मध्य एशियाई देश हैं वो अपने लिए दोस्तों की तलाश में है कि वो किसको अपना सबसे नजदीकी दोस्त माने, और नो डाउट कि चीन वहां घुसने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे समय में वो जो मध्य एशियाई देश हैं उनको एक और दूसरे पार्टनर की तलाश है, क्योंकि थोड़े से वो भी आशंकित हैं, वो भी बैलेंस करना चाहते हैं अपने पावर को, और ऐसे समय में भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो उन्हें अपना मित्र, मित्र तो हैं ही, अपने और भी घनिष्ठ मित्र के रूप में सिद्ध कर सके। और यदि ऐसा हो जाता है तो वहां जो इन्वेस्टमेंट होगा खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरों के लिए, तो भारत की बहुत सी कंपनियों को वहां काम मिल सकता है, और नो डाउट कि ट्रेड का संबंध तो विकसित होगा ही। दोस्तों इसको अभी हम आगे चल करके और देखेंगे, अभी मैंने केवल आपको वो क्लू दिए हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं जिसके आधार पर आपको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की ये जो यात्रा है इसको देखना है। ब्रिक्स की बात हम लोगों ने कल की थी, बैठक होगी, न्यूज में भी थी कि हमारे वित्त मंत्री भी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के दिसंबर में जो एग्जाम होंगे मेंस, उसके लिए तो ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं कि घटना के बाद, बैठक के बाद क्या चीजें होती हैं, फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। मित्रों न्यूज में एक दो और जो खबरें थी, दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी। नंबर एक कि एक सेक्रेटरी जो हमारे श्रम मंत्रालय के हैं उन्होंने एक बात कही थी कि अभी श्रम का हमारे पास 44 श्रम कानून है, लेबर लॉ है, इसको हम रिड्यूस करके 4 श्रम कानून में लाना चाह रहे हैं, मतलब 44 को घटा करके 4 में लाना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा डाटा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेबर लॉ रिफॉर्म की बात बहुत समय से भारत में हो रही है और इंडस्ट्रीज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो श्रम कानून है वो श्रमिकों के इतने ज्यादा हित में है कि वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट बैठ रहे हैं। तो उन्होंने 44 को घटा करके 4 की बात कही है, एक बहुत अच्छी अच्छा डेटा है, आपके दिमाग में होना चाहिए। और मित्र एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी न्यूज में, पता नहीं क्यों उसको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, हालांकि कल के अखबारों में ये न्यूज सुबह आ चुकी थी और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो है कि अब कोई भी मां बिना पिता के नाम के बच्चे की अभिभावक बन सकती है। ये होते हुए आया सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को उल्टा है, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, मां के साथ साथ पिता का नाम भी होना जरूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पिता का नाम होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक माइल स्टोन डिसीजन है, ऐतिहासिक निर्णय है। मित्रों आपको ध्यान होगा कि 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको, आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपको ये कह लीजिए कि एक सलाह दी थी कि खासकर अब चाहे वो समाज में हो रहे हो या कोर्ट के माध्यम से हो रहे हो या सरकार के कानून के माध्यम से हो रहे हो, जैसे लिविंग इन रिलेशन वो सरकार के कानून के माध्यम से हुआ है, राइट, ये जो डिसीजन है ये कोर्ट के माध्यम से हुआ है। समलैंगिकता में जो विवाह वाली जो बात है वो केवल कोर्ट ने अपना, अपने को विड्रॉ कर लिया है, वो केवल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। तो ये जितने परिवर्तन आ रहे हैं एक समाज में, एक जो सोशल इश्यू से रिलेटेड है, ये बहुत मायने रखते हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरह से एक, चाहे इसको आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह लीजिए या वर्तमान जीवन की शैली कह लीजिए या विश्व संस्कृति का एक हो जाना या भारत पर उसके बढ़ते हुए प्रभाव या जीवन में रैशनलिटी का बढ़ना या फ्रीडम की ज्यादा डिमांड होने की बात हो रही हो, एवरीवन इज फ्रीडम, एवरीवन नीड्स इज फ्रीडम, एवरीवन नीड्स इज इंडिविजुअलिटी, हर व्यक्ति को अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, इन सबका दबाव हो, जिनके परिणाम स्वरूप अब आप देख रहे हैं कि न केवल सरकार ही बल्कि कोर्ट भी धीरे धीरे एक उदारवादी रुख अपना रही है। तो ये जो सिम्टम्स आपको सोसाइटी में दिखाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अभी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अखबारों की क्लिपिंग्स पर, और फ्रेंड्स आज कुछ क्लिपिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने अभी मध्य एशियाई देशों की यात्रा के बारे में आप लोगों से कहा, दो तीन क्लिपिंग्स इसको लेकर हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस में दो बहुत अच्छी क्लिपिंग्स आई हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है और आपको उसकी जो मेन बातें थी वो मैंने बता भी दी हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी क्लिपिंग है दैनिक भास्कर की, और वो खासकर उसका टाइटल है डिजिटल नहीं औद्योगिक क्रांति हो। आपने देखा है कि किस तरह से हमारे यहाँ अभी तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है, क्रांति की शुरुआत की बात की जा रही है। तो इसमें इन्होंने उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है कि डिजिटल क्रांति से बात नहीं होगी, औद्योगिक क्रांति से बात होगी, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। आप देखते हैं कि कुछ ही दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है भारत के ग्रामीण आर्थिक सामाजिक और जातिगत सिनेरियो पर। उसकी क्लिपिंग्स भी मैंने प्रोवाइड की हैं, लेकिन मैं उस पर डिटेल में बात नहीं कर पाया हूं, और आगे हम लोग समय आने पर बात करेंगे। और आज उसको लेकर के दो तीन और भी एडिटोरियल कमेंट है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उन आंकड़ों को इन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए उपयोग किया है। मित्रों, ये आंकड़ों का कमाल है। अब आप देखिए कि डिजिटल इंडिया और औद्योगिक क्रांति को सिद्ध करने के लिए जो हमारे ग्रामीण परिदृश्य है, ग्रामीण परिदृश्य के जो आंकड़े जो कह रहे हैं उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप 2014 के मेंस के पेपर्स को देखें तो उसमें इसी तरह का एक सवाल है। सवाल यही किया गया है कि जो पूंजीवाद है वो भारत के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। यहां तक कि उसने यह भी एक सवाल और भी था, दो सवाल थे। एक और सवाल था कि ये जो आर्थिक प्रगति तो हो रही है लेकिन जो रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और मैंने कल आपको बताया था कि कल एक मेल मैंने पढ़ा था जो यहां से जयपुर से आया हुआ था, उसमें जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में जो पूछा गया था, जो भावना शर्मा का मेल था, उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अभी की जो सरकार है उसका जो झुकाव है वो पैसे वालों की तरफ ज्यादा है। तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको केवल इस विराग गुप्ता जी ने जो आर्टिकल लिखा है, जो दैनिक भास्कर का आर्टिकल, इसमें आपको मिलेगा। तो मैंने ये जो थोड़े से लंबी चौड़ी बात इस आर्टिकल को लेकर के की है दोस्तों, उसका पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी चीजें हों और उनका बड़ा से बड़ा और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कला अपने अंदर विकसित कीजिए। आप देखिए कि सिविल सर्विस कैसे आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये आर्टिकल मैं इसी उद्देश्य से डाल रहा हूं, आप इसे देखेंगे और इसको आधार बनाकर के खुद आप कुछ क्वेश्चंस खुद तैयार कीजिए और खुद उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसके अतिरिक्त दो तीन आर्टिकल्स और भी हैं फ्रेंड्स, वो मैं इस आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, न्यूज़पेपर्स के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, और डेफिनेटली ये जो अंतिम चरण है ये ईमेल का चरण होता है। मित्रों, बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबका बहुत बहुत आभार। और इसी में से मित्रों कुछ दोस्तों के नाम हैं, रोशन कुमार नालंदा से, भरत कुमार भिवानी से, ध्रुव वर्मा फरीदाबाद से, ममता नवीन ज्योत कौर अमृतसर से, राजीव रघुवंशी भोपाल से, अरविंद ठाकुर, गिरेंद्र सिंह, आशीष कुमार श्रीवास्तव, इमाम अली, मनोहर दत्त मिश्रा पटना से, बीएस मीना जयपुर से, गुलशन कुमार आप भी पटना से हैं, सुरेखा मुंबई से, और नवीन अग्रवाल, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मैं अपने सेकेंड बैच और फर्स्ट बैच के स्टूडेंट का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत से मेल लिखे हैं, उनको अभी जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया गया था उसको लेकर के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि खासकर जो स्टूडेंट्स क्लास में आए हैं, स्पेशल ऑडियो गाइडेंस का वो और मूल्यांकन करें और जीवंत फीडबैक मुझे दें, क्योंकि ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है इसको आप इस ऑडियो नोट्स कह सकते हैं। छोटे से एक बहुत जो इंपॉर्टेंट इशू होता है उसको लेकर के परीक्षा के दृष्टि से मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। तो मित्रों, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोगों की योग्य बना सकूं तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मुझे प्रोवाइड करें। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं अपने इस आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यही समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।